नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता। आप जानते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड SBI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में खबरें फिलहाल इन चार शब्दों के इर्द गिर्द चल रही हैं। सबसे पहले देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों के मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर हुई जिस पर सुनवाई के दौरान SBI को जमकर लताड़ पड़ी। कोर्ट ने दो दिन के अंदर चुनावी बॉन्ड को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और कल यानी 13 मार्च 2024 को SBI ने हलफनामा दाखिल कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं? हम आपको आज देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हर उस छोटे बड़े सवाल का जवाब जो आपके मन में है। साथ ही बताएंगे कि एक बॉन्ड की कीमत क्या होती है। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। इस चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी शख्स और कॉरपोरेट कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना पहचान जाहिर किए अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स को SBI से फिक्स्ड डिनोमिनेशन में डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है और फिर वो पार्टी इन बॉन्ड को कैश रकम में बदल सकती है। इन बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि फ़ायदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इकाई या शख्स को डोनर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि किसी भी राजनीतिक दल को पैसे से जुड़ा दान देने के बदले उपकार करने की संभावना बनी रहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डोनर की पहचान जाहिर नहीं होती है। जब कोई इंडिविजुअल या संस्था इन बॉन्ड्स को खरीदती है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिटिकल फंडिंग की इस प्रक्रिया में किसी तरह के पक्षपात या प्रभाव से मुक्त है। खास बात यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था कितने भी और कितनी बार इन बॉन्ड को खरीद सकती थी। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत 2017 में फाइनेंस एक्ट के तहत की गई थी। सरकार ने दावा किया था कि इन बॉन्ड्स से बैंकिंग चैनल के जरिए डोनेशन की शुरुआत से पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आलोचकों ने इस तरह के फंड्स के स्रोत के संबंध में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई थी। 4 नवंबर 2023 को एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड और पिछले आम चुनावों में और विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट पाने वाली राजनीतिक पार्टियों को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत फंडिंग मिल सकती है। जिस भी पार्टी को चुनावी बॉन्ड्स मिलते हैं उन्हें ऑथराइज्ड बैंक के साथ एक बैंक अकाउंट के जरिए सीमित वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकैश कराना होता है। अगर डोनेशन मिलने के 15 दिन के भीतर अमाउंट कैश नहीं कराया जाता है तो ये फंड प्रधानमंत्री राहत कोष में डिपॉजिट हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अलग अलग मूल्य वर्गों में उपलब्ध कराया गया। इनकी कीमत 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच होती है। ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध थे। सरकार ने ऑथराइज बैंकों की चुनिंदा ब्रांच से इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए एक खास अवधि का ऐलान किया था। हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर यानी साल में 4 बार 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा आम चुनावी साल में 30 अतिरिक्त दिन भी मिले थे। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। इन बॉन्ड्स की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन की होती है। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के इरादे से पेश किया था, लेकिन आलोचकों का तर्क था कि दानदाताओं की पहचान का खुलासा नहीं करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा है। उनका कहना था कि पैसा कहां से आ रहा है ये पता न होने से भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव होने की संभावना बढ़ जाती है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के साथ राजनीतिक पार्टियों के डोनेशन लेने का तरीका काफ़ी बदल गया। बॉन्ड के आने से पैसा देने का एक कानूनी तरीका मिला और उन लोगों और संस्थाओं के लिए ये एक पसंदीदा तरीका बन गया जिससे वो पहचान जाहिर करे बिना राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चुनावी बॉन्ड को एक वचन पत्र के तौर पर जारी किया जाता है तो एक वाहक होता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक वाहक वो होता है जिस पर लेनदार और देनदार का नाम नहीं होता और ना ही किसी तरह की ओनरशिप रिकॉर्ड की जाती है और जिसके पास ये वाहक होता है उसी को मालिक मान लिया जाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।